होशे अध्याय 11। परमेश्वर अपना विलाप जारी रखते हुए कहता है, होशे अध्याय 11 पद 1। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मती ने अपने सुसमाचार वृत्तांत में इस पद को मसीह यीशु की शिशु अवस्था में मिस्र पलायन की भविष्यवाणी स्वरूप प्रयोग किया है। आपको ध्यान होगा कि जब ज्योतिषियों ने बालक राजा के जन्म की जानकारी हेरोदेस से मांगी थी तब उसने शास्त्रियों से परामर्श किया था और जैसा शास्त्रियों ने बताया था वैसा ही उन्होंने बालक यीशु को उसकी माता के साथ पाया और उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हेरोदेस ने उनसे कहा था कि जब वे बालक को खोज लें तब उसे भी सूचना दे जिससे कि वो भी उसकी उपासना करे। हेरोदेस एक कपटी, निर्दयी और चिड़चिड़ा व्यक्ति था। उसके मन में सदा एक ही शंका रहती थी कि कोई न कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है कि उसके राज्य को उसे छीन ले। इसी संदेह में उसने अपनी पत्नी को और अपने पुत्रों को मार डाला। उसके युग में कहावत प्रचलित थी, हेरोदेस का बेटा होने से अच्छा तो उसका सुअर होना है। अपनी सत्ता के जाने के भय ने उसे पागल बना दिया था। दूसरी ओर हेरोदेस एक महान निर्माणकर्ता था। आज आप इसराइल में उसके द्वारा निर्मित विस्मित कर देने वाली रचनाओं के स्मारक देखेंगे। हेरोदियास, मसादा, यरूशलेम की दीवार के आवेश आदि आपको निश्चय ही विस्मित करते हैं। उसने अनेक स्मारक बनवाए। उसकी मानसिक व्यवस्था ऐसी थी कि वो सदैव अपने मारे जाने के षड्यंत्र से भयभीत रहता था। इस कारण वो अपने संबंधियों की हत्या करता रहता था। अतः उसके निकट रहना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो आप पर ही शक करने लगे कि आप उसके सिंहासन का लालच कर रहे हैं और आपका पुरस्कार आपकी मृत्यु हो जाए। अतः यीशु का पता पा लेने में उसकी कामना ये थी कि वो यीशु की हत्या करेगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने उससे कहा था कि उन्होंने यहूदियों के राजा के जन्म का सितारा पूरब में देखा है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में दूसरा मार्ग लेने को कहा। स्वर्गदूत ने यीशु के माता पिता को कहा कि वे मिस्र को चले जाएं। मती ने होशे के इसी पद का संदर्भ दिया है, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस पद का मुख्य संबंध इसराइल जाति से है जिन्हें परमेश्वर मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में लाया। हम उचित रीति से देख चुके हैं कि धर्मशास्त्र का अर्थ दो मुखी होता है। अतः इस पद का दूसरा अर्थ यूसुफ, मरियम और यीशु का मिस्र अप्रवास से उस समय लौटना है जब हेरोदेस महान की मृत्यु हो गई थी। होशे अध्याय 11 पद 2। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। जब इसराइल अपनी एक प्रकार से बाल्यावस्था में था, अर्थात एक नया राष्ट्र था, तब से परमेश्वर ने उनसे प्रेम रखा। वो उन्हें मिस्र में से निकालकर लाया, परंतु वे परमेश्वर से दूर होकर अन्य देवताओं की उपासना करने लगी। होशे अध्याय 11 पद 3। मैं ही एप्रेम को पाँव पाँव चलाता था। जब वे बालक थे मैंने ही उन्हें चलना सिखाया। होशे अध्याय 11 पद 3 में आगे लिखा है, और उनको गोद में लिए फिरता था। मैंने उनको संभाला और बड़ा किया, उनकी उन्नति में उनकी सहायता की। पद 3 के अंत में लिखा है, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय जीवन में परमेश्वर के स्थान को नहीं पहचाना। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें अस्तित्व प्रदान किया, उनकी सुधि ली, उन्हें चलना सिखाया, उन्हें गोद में लेकर बड़ा किया, उन्हें ये बोध नहीं हुआ कि ये परमेश्वर का हाथ है जो उनके विकास में क्रियाशील है। हम भी भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ सदैव बना रहता है। तब परमेश्वर कहता है, होशे अध्याय 11:4, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी खींचता था। ओह, उनके लिए परमेश्वर का प्रेम कैसा महान था। होशे अध्याय 11:4 में आगे लिखा है, और जैसा कोई बैल के गले की जाते खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। अब उन्हीं में से कुछ लोग अशूरों से बचने के लिए मिस्र की शरण खोज रहे हैं, जबकि परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ाकर लाया था। ये कैसे दुख की बात होती है जब हम लौटकर उन्हीं बातों में पहुंच जाते हैं जिनसे परमेश्वर हमें मुक्त कराकर उभार लाया है। होशे अध्याय 11:5, वो मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अशूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। मिस्र प्रस्थान से पूर्व वे अशूरों के अधीन हो जाएंगे। होशे अध्याय 11:6-7, तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेगी, और ये उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। उनके मन परमेश्वर से विमुख हो गए थे और वे परमेश्वर की आराधना नहीं करने का संकल्प कर चुके थे। होशे अध्याय 11:8, हे एप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? परमेश्वर की पुकार को सुनिए कि वो कैसी दुखपूर्ण है। यद्यपि वे उससे विमुख हो गए थे, यद्यपि वे उसे स्वीकार नहीं करते थे, अन्य देवताओं की उपासना करते थे, परमेश्वर उनको त्यागना नहीं चाहता है। ओ परमेश्वर का प्रेम जो मुझे त्यागेगा नहीं। होशे अध्याय 11:8 में आगे लिखा है, हे एप्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इसराइल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। परमेश्वर की चिल्लाहट, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? और इस प्रकार परमेश्वर कहता है, होशे अध्याय 11:9, मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर एप्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। ये वो महिमा की प्रतिज्ञा है जो उस आने वाले दिन पूरी होगी, जिस दिन परमेश्वर इसराइल को विशिष्ट स्थान पर पुनस्थापित करेगा, अर्थात प्रभु के राज्य में। होशे अध्याय 11:10, वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वो तो सिम की नाई गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह, जो यहूदा के गोत्र का सिम है, फिर से आएगा, वो सिम के सदृश गरजेगा। पहले तो वो एक मेमने के रूप में नम्रता और दीनता में आया था कि संसार के लिए पापों की बलि दे। यशया ने लिखा, यशया अध्याय 53:7, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वो बलिदान के मेमने के रूप आया था और उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, परंतु जब वो फिर से आएगा तब वो सिंह के स्वरूप होगा जो राजा कहलाता है। उसमें विजय सामर्थ और महिमा होगी। तब सारी पृथ्वी के लोग, मत्ती अध्याय 24 पद 30, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वो जब जैतून के पर्वत पर पैर रखेगा तब वो शेर के समान गरजेगा। मैं तो उसकी गर्जन सुनने की प्रतीक्षा ही नहीं कर पाता हूं। पुराने नियम में हम अनेक स्थानों में उसका उल्लेख देखते हैं। हमारे अगले अध्ययन में इसका उल्लेख फिर से होगा। योएल अध्याय 3 पद 16 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में मसीह के आगमन के विषय लिखा है कि वो आकर एक पैर भूमि पर और दूसरा समुद्र पर रखेगा। उसके हाथ में पुस्तक होगी और तब ये घोषणा की जाएगी कि पृथ्वी के सब राज्य हमारे यहोवा और उसके मसीह के हो गए हैं, और वो उस सिंह के समान गरजेगा जिसने अपना शिकार पकड़ लिया हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि होशे अध्याय 10 पद 11 अभी पूरा होना बाकी है। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में दिया गया है। आप इसको उसकी सिंह रूपी गरज के साथ जोड़कर पढ़ना अधिक उत्तम मानेंगे। होशे अध्याय 11 पद 11 और 12, वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अशूर के देश से पंडुकी की भांति थर थराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। एप्रेम ने मिथ्या से और इसराइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। उत्तरी राज्य परमेश्वर का विरुद्ध हो गया था, अतः उनका विनाश होना निश्चित था। यहूदा अभी निष्ठावान था, परंतु उसके विनाश का दिन भी आने वाला है।